समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा में। साथियों, निराशा के क्षणों को कभी भी जीवन पर हावी ना होने दें, बल्कि जीवन के हताशा भरे क्षणों से कुछ सीखने का प्रयास करें। इन लम्हों से उबरकर आगे बढ़ना और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज मैंने आपसे ये बात क्यों कही है, ये आपको कार्यक्रम के दौरान पता चलेगा। फिलहाल समय है परिक्रमा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का। मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं अनुजा कुमार।
नमस्कार, हेलो एंड गुड आफ्टरनून सरफिरोजी। सरफिरोजी, वी आर ऑल सोशल क्रीचर्स हु नीड इंटरेक्शन एंड कनेक्शन विथ ईच अदर। सोसाइटी प्रोवाइड्स अस विद अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, पर्पस एंड मीनिंग। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस विद द रिसोर्सेज एंड सपोर्ट वी नीड टू थ्राइव। वी आर टूडे लिविंग इन अ कॉन्स्टेंट चेंजिंग सोसाइटी। And living in a modern life is all about embracing the ever-changing technologies, trends, and lifestyles that are constantly evolving. It is about finding balance between work and leisure while staying connected to the world around us. This virtual interconnectedness brings people closer together, overcoming geographical barriers, and also creating new avenues for connection and communication. While we appreciate the good side of technology's impact in relationships, we should also recognize its possible downsides. Excessive use of technology when unchecked is inadvertently leading to reduction in direct in-person interactions, affecting the depth and quality of personal relationships. The convenience of digital communication may sometimes deter us from engaging with loved ones in the physical world, leading to a potential decline in our ability to connect on a deeper or more personal level. We will discuss all these things leading to a serious problem in our society these days in our Dateline section, but first, the news making headlines at this hour. Prime Minister Narendra Modi chairs first governing board meeting of the newly formed Anusandhan National Research Foundation in New Delhi.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार की साइबर अपराधों से निपटने के लिए अगले 5 साल में 5,000 साइबर कमांडो को प्रशिक्षित करने की योजना। साइबर सुरक्षा के सभी हितधारकों से इस खतरे के निपटने के लिए एक साथ आने का आह्वान।
आम आदमी पार्टी अनाउंसेस लिस्ट ऑफ 9 कैंडिडेट्स फॉर हरियाणा असेंबली इलेक्शंस।
भारत ने कहा, सुरक्षा परिषद में राजनीतिक मतभेद से संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियान प्रभावित हो रहे हैं। स्थायी सदस्यता को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने का आह्वान।
इन उत्तराखंड, 5 पिलग्रिम्स किल्ड इन अ लैंडस्लाइड ट्रिगर्ड बाय रेन ऑन केदारनाथ नेशनल हाईवे नियर सोन प्रयाग।
और वियतनाम में तूफान यागी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 65 हुई।
And Sir Firozi, it's now time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at national or global level. And today we will talk about the World Suicide Prevention Day. In the beginning of the program, I was talking about loneliness in this digital world. Social isolation and loneliness are increasing in the new digital age, especially with the lack of in-person contact. The digital world we have created has made us less patient. The concern is that lack of in-person contact results in feeling separated when our social life is mostly digital. People with hundreds of Facebook friends still experience loneliness and isolation. Those who grew up with digital technology may feel comfortable socializing online, but others who grew up in the analog world are less adept and find themselves at a disadvantage with online platforms. And in this day, of course, World Suicide Prevention Day comes into the meaning. Today is World Suicide Prevention Day. Every year it is observed to raise awareness about suicide prevention and attempts. The observation was established in 2003 through the combined efforts of the International Association for Suicide Prevention and the World Health Organization. Every suicide is a tragedy, not only because of the loss of life, but also the impact on those who are left behind. But suicide is not inevitable. Every suicide is potentially preventable, and we all have a role to play in its prevention. According to reports from WHO, over 7 lakh individuals take their lives each year. The day aims to focus attention on the issue, reduce stigma, and raise awareness among governments, organizations, and the public, giving a singular message that suicide are preventable.
अनुजा, आमतौर पर किसी के मन में अगर अपनी जान देने के विचार आ भी रहे हैं या वो ऐसा कदम उठाने के बारे में सोच रहे हैं तो हमें उनके बर्ताव समझ नहीं आते। अगर किसी के मन में इस तरह की फीलिंग आ रही है तो इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति को उस तरह की नौकरी ना मिल पा रही हो जैसी वो चाहता है, जिस तरह की करियर ग्रोथ वो अपनी जिंदगी में चाहता है। और हम आए दिन इस तरह की खबरें पढ़ते हैं कि सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा कोई विद्यार्थी हताश होकर आत्महत्या के बारे में सोच रहा है। कई बार पेरेंट्स की तरफ से बच्चों पर प्रेशर होता है एकेडमिकली अच्छा करने का, उन बच्चों का कंपैरिजन दूसरे बच्चों से किया जाता है जिससे वो एक तरह से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। उसी तरह किसी के घर में कई परेशानियां चल रही होती हैं, कई बार लोग सामाजिक कारणों से भी इस तरह के कदम उठाते हैं। इस सबको देखते हुए 2024-2026 के लिए विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस की थीम आत्महत्या को लेकर सोच को बदलना है, जिसके तहत लोगों से यह आग्रह किया गया है कि इस विषय पर चर्चा शुरू की जाए। आज भी सुसाइड यानी आत्महत्या जो है वो ऐसे विषयों में से है जिसे टैबू की तरह देखा जाता है। हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते, यहां तक कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो लोग तनाव से ग्रस्त होते हैं, जिनके अंदर डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, उन्हें लोग अक्सर अवॉइड करते हैं। ऐसे में उन लोगों के पास कोई करीबी नहीं रह जाता जिनसे वो अपनी फीलिंग शेयर कर सके। तो इस थीम के तहत लोगों को आत्महत्या पर बातचीत करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि जिन भी लोगों के मन में जिन भी कारणों से इस तरह के विचार आ रहे हैं वो किसी से खुलकर बात करें और इस बात पर भी हम चर्चा करें कि आत्महत्या के मामलों को कैसे रोका जा सकता है। जैसे कि आपने बताया कि हर सुसाइड प्रिवेंटेबल है।
जी हाँ, एंड यू वर टॉकिंग अबाउट द थीम दिस ईयर, चेंजिंग द नैरेटिव ऑन सुसाइड, विच मीन्स ट्रांसफॉर्मिंग द वे वी परसीव सुसाइड एंड शिफ्टिंग फ्रॉम अ कल्चर ऑफ साइलेंस एंड स्टिग्मा टू वन ऑफ ओपननेस, अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट। Of course, this theme aims to raise awareness about the importance of reducing the stigma and encouraging open conversations to prevent suicides. Being connected to family and community support and having easy access to healthcare can certainly decrease suicidal thoughts and behaviors. And of course, changing the narrative requires advocating for policies that prioritize mental health, increase access to care and also provide support for those in need.
एक इंसान एक समाज की आत्महत्या की रोकथाम को लेकर समझ अलग अलग हो सकती है, लेकिन अनुजा, हम सब मिलकर आत्महत्या को रोकने के प्रयास में भागीदार हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला कदम यह है कि हम इस बारे में बातचीत शुरू करें, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप किसी परेशानी से गुजर रहे हैं और आप किसी से उसे शेयर ही कर लें तो आपका 50% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाता है। और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2024 भी इसी थीम के तहत मनाया जा रहा है कि हम इस बारे में बात करें और आत्महत्या के बारे में सोच को बदलें। और जिस तेजी से सभी उम्र वर्ग और समाज के लोग इस तरह के तनावग्रस्त विचारों से घिरे हुए हैं, उसे देखते हुए हमें इसे रोकने के लिए जल्दी और बड़े कदम उठाने चाहिए। हम इस बड़े से बदलाव में बहुत छोटा सा योगदान देकर इस स्थिति को बदल सकते हैं।
Yes, Sir Firozi, engaging in even brief discussions about mental health can dismantle barriers, it can foster supportive environments and encourage individuals to seek the help they need. Every conversation contributes to a more understanding society where mental health issues are acknowledged and addressed. The governments in most of the countries are trying to prioritize mental health within their policies, ensuring greater access to mental health services and implementing supportive measures for those who need it. By addressing these needs at the policy level, we can create a more inclusive and responsive mental health care system. And World Suicide Prevention Day is a poignant reminder of our collective responsibility to address suicide with compassion and action. By fostering an open dialogue, we can contribute to a world where every individual feels valued and supported. And for this, mental health has come a long way in the country. Outreach programs are being conducted far and wide. A 24-hour telepsychiatry helpline, Telemanas, which you have to dial 14416, is available. Mental health experts are being recruited in large numbers. Several research and programs are being funded, and the government is actively taking notice of the massive country's mental health needs. By addressing these areas and working collaboratively across sectors, we can create a more supportive and compassionate society where suicide is preventable and everyone feels valued and understood. Start the conversation today. Every conversation, no matter how small, contributes to a more supportive and understanding society. Together, we can make a difference and work towards a future where suicide prevention is prioritized.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या खास है।
Yes, and for this, where we can start with first, the All India Institute of Medical Sciences, AIIMS, has inaugurated a dedicated tobacco cessation clinic today in New Delhi. TCC is a collaborative effort between the National Drug Dependence Treatment Center and the Institute's Department of Pulmonary, Critical and Sleep Medicine. The primary focus of the initiative is to support individuals who are suffering from tobacco addiction. Here is a report from our correspondent.
The global tobacco epidemic remains one of the largest public health threats across the world, causing over 80 lakh deaths annually. According to the World Health Organization, smoking and consumption of tobacco are causing premature deaths. With over 70 lakh deaths, India, the world's second largest consumer of tobacco, witnesses over 13 lakh tobacco-related deaths each year. To stop the consumption of tobacco and create awareness about the disadvantages of tobacco, the government launched the National Tobacco Control Program in 2007. The newly inaugurated tobacco cessation clinic in AIIMS Delhi will help individuals quit tobacco by providing counseling and treatment. This clinic will be operational on every Tuesday in room numbers A519 and A526 in the new Rajkumari Amrit Kaur OPD building on the 5th floor. Patients can register for treatment at 8:30 a.m. on the ground floor of the A wing of the building. For Parikrama, Priya, Akashwani News, Delhi.
And after Delhi, now let us go to our Puducherry correspondent who has filed a story on street vendors.
Street vendors are a vital part of the urban informal economy, offering goods and services at affordable prices right at the doorsteps of city dwellers. From vegetables, fruits and street food to textiles, footwear, artisan products and services like barber shops and laundry, these vendors cater to our daily needs. However, the livelihoods of street vendors were severely impacted by the COVID pandemic and subsequent lockdowns. To support them, the central government launched the PM Swanidhi Roadside Vendors Credit Scheme, implemented by the Union Ministry of Housing and Urban Affairs. The scheme aims to enhance the economic well-being of street vendors. Puducherry has been recognized for its exceptional implementation of PM Swanidhi, receiving the second prize among small states and union territories. Building on this success, Puducherry recently celebrated its street vendors by hosting a three-day street vendors festival at Gandhi Tidal on Beach Road. The festival was organized by the Puducherry Urban Development Agency, Local Administration Department, Puducherry Municipality, Olgaret Municipality and Indian Bank. Lieutenant Governor of Puducherry, K. Kailash Nathan, inaugurated the festival with Puducherry Chief Minister N. Rengasamy, Assembly Speaker R. Selvam, Public Works Minister K. Lakshmi Narayanan, Chief Secretary Dr. Sharad Chauhan and other dignitaries in attendance. During the event, PM Swanidhi Prize Awards were presented to Puducherry and Olgaret municipalities for their efforts in promoting street vendors. The festival featured a street food fair and product exhibitions by self-help groups in 34 stalls, showcasing traditional foods, seafood, healthy foods and other unique local flavors. Self-help groups also displayed handmade products such as leather bags, footwear, decorative items and jewelry. Indian Bank provided training on digital cash transactions to street vendors. PM Swanidhi success stories were also shared. Cultural events were also held in connection. This is Bibin Asnath, Agashavani Puducherry.
आदिवासी बहुल बस्तर की खूबसूरती, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, अनूठी सामाजिक रहन सहन और ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व के स्थलों की जानकारी अब देश के साथ ही विदेश के लोगों को भी मिलेगी। इसके लिए बस्तर जिला प्रशासन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद ले रहा है और ब्यौरा दे रहे हैं रायपुर से हमारे संवाददाता विकल्प शुक्ला।
छत्तीसगढ़ का बस्तर अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए मशहूर है। यहाँ घने जंगल हैं, तो वहीं चित्रकूट और तीरथगढ़ जैसे शानदार जलप्रपात भी हैं। बस्तर में जनजातीय संस्कृति और उनकी परंपराओं को बहुत करीब से देखने का मौका मिलता है। बस्तर का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है। 75 दिनों तक चलने वाला यह बस्तर दशहरा संभवतः विश्व का सबसे लंबी अवधि तक मनाया जाने वाला पर्व है। इसके पूजा विधानों में बस्तर की संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। बस्तर की इन विशेषताओं को देश और दुनिया के सामने लाने के लिए बस्तर जिला प्रशासन अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद ले रहा है। हाल ही में बस्तर के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के पास आसना में स्थित बादल अकादमी में द बस्तर मड़ई का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न स्थानों से सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को आमंत्रित किया गया। इन लोगों को बस्तर के विभिन्न पर्यटक स्थलों का भ्रमण कराया गया। इस अवसर पर बस्तर टूरिस्ट सर्किट मैप और थीम म्यूजिक का भी विमोचन किया गया। इस बस्तर टूरिस्ट सर्किट मैप में अलग अलग रंगों से बस्तर की विशेषताओं और इसकी विविधताओं को दर्शाया गया है। हरे रंग से जंगल, भूरे रंग से कुटुम्बसर सहित अन्य प्राकृतिक गुफाएं और पुरातात्विक स्थल, पीले रंग से जनजातीय संस्कृति और बस्तर के हाट बाजार तथा लाल रंग से बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी और बस्तर दशहरे को प्रदर्शित किया गया है। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
एंड फ्रॉम छत्तीसगढ़ वी आर नाउ टेकिंग यू टू ओडिशा वेयर IIM Sambalpur, one of the premier management institutions, recently organized a buyer-seller meet at its campus to empower the traditional handloom sector of Odisha. The initiative provides master weavers with direct access to the market, thereby significantly enhancing their global business opportunities and promoting the rich heritage of Odisha's handloom industry. We have more from our Sambalpur correspondent.
The buyer-seller meet aimed to facilitate networking between master weavers and renowned buyers from various regions of India, including prominent brands such as Fab India, Nekka Fashions, Reliance Swades and Aditya Villa Leva. The event also marked the successful conclusion of the second edition of the 12-weekend Small Business Management Training Program, specially designed for master weavers from Western Odisha, being conducted at the IIM Sambalpur campus. The program was organized in collaboration with several key stakeholders, including the Small Industry Development Bank of India, Aditya Villa Grasim, Imperial College, the Ormas and Mission Shakti Department of Odisha. On this occasion, an exhibition comes sale of weaver products that showcase a diverse array of handloom creations, highlighting significant advancement in sustainable fashion. The exhibition emphasized the use of fiber yarn dyed with natural dyes, including XL yarn, as well as innovation in fiber yarn sourced from water hyacinth, bamboo and banana plants. The valedictory event attracted over 1,000 delegates comprising senior management representatives from SIDVI, Aditya Villa Grasim Industries and other renowned individuals within the handloom sector. Moreover, the institute has formalized a memorandum of understanding with Flipkart to facilitate the onboarding of master weavers and artisan products onto the digital marketing platform, thereby enhancing their market reach. The program was attended by more than 1,000 people, including buyer sellers, master weavers, faculties, staff, students of IIM Sambalpur. For Parikrama, this is Alok Chandra Bari, Akashvani, Sambalpur.
And now we will take you on a tour of India's freedom struggle and recall events that happened on this day.
In today's episode, we will talk about two great sons of the soil, Baga Jatin and Govind Ballabh Pant.
This day in 1915, one of the fiercest freedom fighters of his times, Jyotindranath Mukherjee, had the final battle with the British and was martyred.
Jyotindranath was born in the Kushtia subdivision of Nadia district of undivided Bengal, in what is now Bangladesh. Jatin loved all Indians irrespective of class or caste or religions, right from his early days.
Once, to save the villagers, Jatin fought hand to hand with a man-eating Royal Bengal tiger for 3 hours and killed the tiger with a Gorkha dagger. This is how he came to be known as Bagha Jatin.
As a college student, Jyotindranath joined a relief camp organized by Sister Nivedita. Sister Nivedita introduced Jatin to Swami Vivekananda. Vivekanand instructed Jatin to take up the mission to serve the motherland.
The nation was seething with discontent against the British Raj. It was Sri Aurobindo who trusted Jatin to create a secret society. That secret society was known as Jugantar. and Bagha Jatin became its commander-in-chief.
Jatin's clarion call, Amra Morbo, Jogat Jagbe, meaning we shall die to awaken the nation, evoked the currents of Indian nationalism. Jatin inspired many young minds, including Ras Bihari Bose, who described Jatin a real leader of men with fiery energy and personality.
In the year 1914, when the First World War broke out, Jatin approached the German Crown Prince for the delivery of arms for his fight against the British. M.N. Roy was asked to coordinate with the Germans for the arrival of the shipment.
Jatin, along with his followers, was hiding near Balasore, where the shipload of arms from Germany was planned to be received. But the information of this consignment was leaked by an Irish agent and the British attacked them.
While the British side was armed with highly sophisticated rifles, Jatin and his team fought with pistols. Jatin and his followers fought hard.
But Bagha Jatin was seriously wounded in the battle, and the next day he succumbed to injuries in Balasore City Hospital.
The poet Nazrul Islam hailed the Battle of Balasore as the haldic heart of New India.
Balasore, Guri Balamer Tir, Nabo Bharater haldic heart, Uday Ghatuli Ronge Ranga Hoye, Uthechilo Jathas Tupat, Anil Gagan Gambuj Chhoa, Kapiya Uthilo Nilachal, Astro Bire Chuti Kore Ane, Mottho Gagane Kun Pagol, Apon Bukere Rakto Chaloke, Paushuro Bire Kore Lohi, Bimane Bimane Baje Bunduki, Thoru Thoru Kape Sarugoki, Devoki Matar Bukir Pathor, Nori Lokaraya Akushak, Bina Mekhe Kole Doitto Purir, Rasha Deshedin Bajrapak.
Govind Ballabh Pant, a legal luminary and a freedom fighter, was born on 10th of September 1887 in Khunt village near Almora.
He participated in the protests against the Simon Commission in 1928. Pant was targeted by the police and he sustained severe injuries, which prevented Pant from straightening his back for the rest of his life.
He was imprisoned many times during freedom struggle. In 1930, Pant was arrested and imprisoned for several weeks for organizing the Salt March. He was again arrested in 1933 and remained in jail for 7 months for attending a session of the Provincial Congress.
Again in 1940, Pant was imprisoned for helping organize the Satyagraha. And in 1942, he was sent to Ahmednagar jail for 3 years for signing the Quit India Resolution.
After independence, Govind Ballabh Pant served as the first Chief Minister of Uttar Pradesh.
He left for his heavenly abode on the 7th of March 1961 at the age of 74, while still in office as the Home Minister of the country.
That brings us to the end of this episode of Azadi Ka Safar. See you in the next episode tomorrow.
And talking about the business news today, India's equity benchmark indices ended higher today with Sensex soaring over 350 points and Nifty regaining its 25,000 level, fueled by strong buying in IT, telecommunication, power and healthcare stocks. At the closing bell, the Sensex, which is a pack of 30 companies, was up 361 points at 81,921 and the NSE Nifty was up 104 points at 25,041. Both the indices surged nearly 0.5%. In the Indian bullion market, 24-carat gold was trading at 72,050 rupees per 10 grams, while silver is trading at 83,910 per 1 kilogram.
Aur ab baat khelon ki. आकाशवाणी दिल्ली कल सुब्रतो कप फुटबॉल मैच का हिंदी और अंग्रेजी में लाइव कमेंट्री प्रसारण करेगा। आंखों देखा हाल शाम 5:45 से मैच की समाप्ति तक प्रसारित किया जाएगा। ये प्रसारण एफएम रेनबो प्राइमरी चैनल, डीटीएच, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप, पीबी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर होगा। और अब बात पेरिस पैरालंपिक की। पेरिस पैरालंपिक से भारतीय दल स्वदेश लौट आया है। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज भारतीय दल का शानदार स्वागत किया गया। भारतीय दल ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। मौजूदा चैंपियन भारत ने कल चीन के हुलुनबीर में पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के अपने दूसरे मैच में जापान को 5-1 से हराकर जीत दर्ज की। इससे पहले चार बार के चैंपियन भारत ने अपने पहले मुकाबले में मेजबान चीन को 3-0 से हराया था। हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली भारतीय टीम का मुकाबला कल मलेशिया से होगा। टूर्नामेंट की शीर्ष चार टीमें 16 सितंबर को होने वाले सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी और फाइनल 17 सितंबर को खेला जाएगा।
And now coming to our last segment where we pay tribute to some great personalities associated with today's date of 10th September, we start with paying tribute to Sukumar Ray, a Bengali writer and poet from British India whose pioneering work was compared to Lewis Carroll's Alice in Wonderland. Amazing sense of humor, sharp power of observation and unfathomed wit merged him with a profound command on selection of words produced a class of humor which was equally approachable by children as well as the grown-ups. More than 80 years after his death, Ray still remains one of the most popular of children's writers in Bengali literature. And the next personality is an Indian soldier. He was posthumously given India's highest military decoration, the Paramveer Chakra, for his actions during the Indo-Pakistani War of 1965. I'm talking about Abdul Hamid Idrisi. Hamid joined the army in December 1954 and was posted to the 4th Battalion of the Grenadiers Regiment. During the Sino-India War, his battalion participated in the Battle of Namka Chu against the Chinese People's Liberation Army. And during the Indo-Pakistani War of 1965, the 4th Grenadiers Battalion was entrusted with a vital position where Hamid destroyed 8 Pakistani tanks and was killed in action destroying the 9th tank.
आज राधिका रमन प्रसाद सिंह जी की जयंती है। इनका हिंदी के आधुनिक गद्यकारों में प्रमुख स्थान है। इन्होंने कहानी, गद्य, काव्य, उपन्यास सहित सभी विद्याओं में साहित्य की रचना की। इन्हें इनकी रचना कानों में कंगना के लिए याद किया जाता है। सन 1962 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से नवाजा गया। पेश है उनकी इसी रचना कानों में कंगना के पर आधारित टेलीफिल्म का ये अंश।
जूही जूही, यह तुम्हारी मालकिन और किरण, ये है जूही। बचपन से इसी घर में पली बड़ी है और घर का सारा काम संभालती है।
अच्छा।
और चले
भैया, इस घर की बहू पहली बार घर में प्रवेश कर रही है। आप रुकिए, मैं अभी आई।
ओहो, वाह किरण, तुम्हें तुम्हारा घर कैसा लग रहा है?
स्वर्ग से भी सुंदर।
And today is also the birth anniversary of Sir Ranjit Singh Ji, called the father of Indian cricket, as he was the earliest top-class Indian cricketer, an unorthodox batsman whose fast reactions and individual style were to revolutionize the game. Previously, batsmen had generally played forward and made shots to the offside. Ranjit Singh Ji took advantage of the improving quality of pitches in his era and played more on the back foot, both in defence and attack. He is particularly associated with one shot, the leg glance, which he popularised and may have invented it also.
आज असित कुमार हालदार जी की जयंती है। ये चित्रकार, साहित्यकार, चिंतक और कवि थे। असित कुमार हालदार के द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन कल्चर एट अ ग्लास नामक पुस्तक पूर्णतः भारतीय ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। मेघदूत की रचना और उसकी ऋतुसंहार का उन्होंने बांग्ला में अनुवाद किया और संस्कृत में अनेक लेख लिखे। आज ही विश्वनाथ सत्यनारायण जी की भी जयंती है। ये तेलुगु भाषा के साहित्यकार थे। इन्हें 1971 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साल 1971 में पद्म भूषण से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इनकी मुख्य रचनाओं में वेई पगुल्लू, एक वीरा, किन्नर सानी, पाटलू, ऋतु सहारमू, काव्य हरिश्चंद्र आदि शामिल हैं। और आज ही आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की बहुचर्चित और सम्मानित लेखिका चित्रा मुद्गल जी का भी जन्मदिन है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इजाजत दीजिए सर फिरोजी और अनुजा कुमार को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।